हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आयुष्मान ने अर्श को अपनी बाहों में उठाया हुआ था और प्रीति उसके बगल में चल रही थी। तीनों आइसक्रीम खा रहे थे। अर्श की बातें चालू थीं और उसकी मासूमियत भरी बातों से दोनों के लबों पर मुस्कान खिल गई थी। तीनों साथ में काफी खुश नजर आ रहे थे। कोई था वहां जिसकी नज़र उन्हीं पर थी, पर उस शख्स की मौजूदगी से आयुष्मान और प्रीति पूरी तरह से अनजान थे। उस आदमी ने आयुष्मान और प्रीति को देखा, फिर कुछ देर तक आयुष्मान की गोद में मौजूद अर्श को निहारता रहा। जब तक प्रीति और अर्श के साथ आयुष्मान अपनी सोसाइटी के अंदर नहीं घुस गया, वो शख्स साए की तरह उनके साथ रहा, फिर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। क्योंकि डिनर प्रीति ने बनाया था, इसलिए नियम के मुताबिक घर पहुंचने के बाद आयुष्मान किचन का काम करने चला गया और प्रीति अर्श को सुलाने। आयुष्मान जब तक सब काम खत्म करके कमरे में पहुंचा, अर्श सो चुका था। सारे दिन की शैतानियां और उछल कूद के बाद वो रात तक पूरी तरह से थक गया था, फिर भी सोने में खूब नाटक किया था। प्रीति ने बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया था और अब उसके बगल में लेटी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए शायद कुछ सोच रही थी। कहाँ गुम हो मैडम, किस ख्यालों में इतनी खोई हुई हो कि तुम्हें मेरे आने तक का पता नहीं चला? प्रीति के कानों में आयुष्मान की आवाज़ पड़ी। तब कहीं जाकर वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। उसने सर घुमा कर देखा तो आयुष्मान उसके बगल में बैठा था, लबों पर सौम्य से नस्कान सजाए उसे ही देख रहा था। कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि ये तीन साल कितनी जल्दी बीत गए और कितना कुछ बदल गया बीते तीन सालों में। प्रीति की बात सुनकर आयुष्मान भी सोच में पड़ गया। सच में बीते तीन सालों में बहुत कुछ बदल गया था। बहुत कुछ ऐसा घटित हो गया था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। कुछ अच्छे तो कुछ बुरे बदलाव सबकी ज़िंदगी में आए थे। अवधेश जी अब रिटायर हो चुके थे, गरिमा जी बीमार रहने लगी थी और उस घर की लगभग पूरी जिम्मेदारी आयुष्मान के कंधों पर आ गई थी। मानसी शादी के लायक हो गई थी, इसलिए उसके लिए लड़के देखे जा रहे थे। फिलहाल वो जॉब करती थी और अपनी तरफ से आयुष्मान की मदद करने की पूरी कोशिश करती थी। प्रेम कहाँ था इसकी खबर किसी को नहीं थी। उसने एक बार पलटकर अपने माँ बाप की खबर तक नहीं ली थी। आयुष्मान ने तो उन्हें अपने साथ रहने को कहा था, पर अवधेश जी अभी वहाँ नहीं आना चाहते थे क्योंकि उनके घर से उनकी बहुत सी यादें जुड़ी थीं। फिर वो वहाँ समय व्यतीत करने के लिए कुछ काम भी कर रहे थे। प्रीति की फैमिली में सब वैसा ही था। प्रीति कई बार वहाँ गई थी, पर आज तक उसके माँ बाप ने अपनी गलती मानकर उससे माफ़ी नहीं मांगी थी और रिश्तों में मतभेद दूरियों को जन्म दे चुके थे। माधुरी अब भी प्रीति के खिलाफ जहर ही उगलती थी और प्रीति की ज़िंदगी में उसकी खुशियों में आग लगाने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। शायद उसके इसी गुनाह की सज़ा है कि वो अब तक माँ नहीं बन सकी थी। राजेश से प्रीति का रिश्ता अब भी वैसा ही था। बुआ जी दुनिया से जा चुकी थीं और उनके जाने पर प्रीति बहुत रोई थी। आयुष्मान ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला था। प्रीति का एक सहारा उससे छिन गया था, पर वक्त के साथ वो संभल गई। दो साल पहले चाचा जी ने एक एक्सीडेंट में अपने चलने फिरने की शक्ति खो दी थी। वक्त भगवान की लाठी पड़ी तो चाचा चाची दोनों की अक्ल ठिकाने आ गई। आयुष्मान से लेकर गुरमीत और जसमीत तक उन्होंने सबसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। घर पर आई विपदा के कारण गुरमीत दादी जसमीत और अपनी एक साल की बेटी के साथ वापस अमृतसर लौट गया था, पर आयुष्मान ने उनसे कोई संबंध रखने से साफ इनकार कर दिया था। दादी से उनकी बात होती थी और बीते साल गुंजन और नूर की शादी में वो वहाँ गए भी थे, पर सबसे दूरी बनाकर ही रखी थी। सब आत्मबोध में ही जी रहे थे। चाची जी अब सुधर चुकी थीं और अपनी पोती पर सारा प्यार लुटाती थीं। सब काम गुरमीत संभालता था। आयुष्मान के हिस्से की जमीन जायदाद दोनों बहनों के पास ही थी और आयुष्मान ने अब अमृतसर से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में अब किसी की नफरत भरी कड़वाहट को नहीं चाहता था। श्रेया और रौनक की ज़िंदगी भी बढ़िया चल रही थी, पर दो साल पहले उनकी लाइफ में एक नन्ही परी आई थी, श्रेष्ठा, जिसके बाद दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं, पर प्यार अब भी वैसे का वैसा ही था। आयुष्मान और रौनक की दोस्ती बिल्कुल पहले जैसी थी। श्रेया से प्रीति की दोस्ती हो चुकी थी, बातें बातें मिलना जुलना होता ही रहता था। आयुष्मान और प्रीति का रिश्ता वक्त के साथ और मजबूत हो गया था। उनका रिश्ता प्यार, विश्वास और समर्पण की अटूट डोर से बंधा था। प्रीति का चैनल अब काफ़ी फेमस हो चुका था, जिसका श्रेय काफ़ी हद तक आयुष्मान को जाता था, पर अब तक आयुष्मान ने प्रीति की कमाई का एक पैसा इस्तेमाल नहीं किया था। अपनी जिम्मेदारियों के साथ वो अर्श के फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रहा था। अर्श और प्रीति को वो पूरा वक्त देता था और उसके प्यार में कहीं कोई कमी नहीं आई थी। सबकी ज़िंदगी में बहुत से बदलाव आए थे, पर लगभग सभी खुश थे। आयुष्मान ने बीते तीन साल के बारे में सोचा, फिर प्यार से प्रीति के गाल को छूते हुए मुस्कुराकर बोला, सच में बीते तीन सालों में बहुत कुछ बदल गया, पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार लगाव वैसे का वैसा ही है और इसमें कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। जानती हूँ, प्रीति ने आयुष्मान की बात का जवाब मुस्कुरा कर दिया और आयुष्मान के सीने से लग गई। आयुष्मान ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ पल दोनों यूं ही एक दूसरे के सीने से लगे, एक दूसरे को महसूस करते हुए बीते वक्त के बारे में सोचते रहे। आसान नहीं था उनके लिए अर्श को संभालना, पर दोनों ने मिलकर सब संभाल लिया था। अर्श, घर की जिम्मेदारियां, सब में दोनों की बराबर की भागीदारी रही थी। उसने कभी प्रीति को ये नहीं कहा था कि वो घर पर रहती है तो घर के सब काम उसकी जिम्मेदारी हैं, या वो बाहर काम करने जाता है तो वो घर का सरताज है, किसी काम को हाथ नहीं लगाएगा। उसने हमेशा से साझेदारी के साथ इस रिश्ते और इन जिम्मेदारियों को निभाया था। शायद तभी आज भी उनके रिश्ते में जरा भी मनमुटाव नहीं है और प्रीति इतनी खुश है उसके साथ। इतना लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्सिबल पति पाकर भला दुनिया की कौन सी लड़की खुश ना होती। प्रीति भी अपने इस छोटे से परिवार में बहुत खुश थी। कुछ पल दोनों यूं ही एक दूसरे के सीने से लगे बैठे रहे। फिर आयुष्मान ने प्रीति को खुद से दूर करना चाहा, पर प्रीति ने उसकी पीठ पर अपनी बाहों के घेरे को कस दिया और उसके सीने में अपना मुंह घुसाते हुए मुंह फुलाए बोली, मुझे आपकी धड़कनों को सुनना बहुत पसंद है, अभी दूर नहीं जाना आपसे। उसकी बात सुनकर आयुष्मान के लबों पर कातिलाना मुस्कान छा गई। उसने भी प्रीति को खुद से दूर करने की कोशिश बंद कर दी। अपनी बाहों के घेरे को उस पर कसते हुए आयुष्मान ने प्यार से उसके सर को चूम लिया और प्रीति को अपनी बाहों में भरे हुए ही बिस्तर पर लेट गया।